சித்தேப்யஹ ஓம் நமஹ சித்தேப்யஹ ஓம் நமஹ சித்தேப்யஹ மங்களம் பகவான் வீரோ மங்களம் கௌதமோ கணி மங்களம் குந்த குந்தார்யோ ஜெயன தர்மோஸ்து மங்களம் சர்வ மங்கள மாங்கல்யம் சர்வ கல்யாண காரகம் பிரதானம் சர்வ தர்மாணாம் ஜெயனம் ஜயது சாசனம் ஜெயனம் ஜயது சாசனம் ஜெய் பஞ்ச பரமேஸ்வரி பகவான் கீ அஹிம்சா பரமோ தர்ம கீ ஆச்சாரிய குருவர் ஸ்ரீ வித்யாசாகர முனி மகாராஜ் கீ பஞ்ச கல்யாண பிரதிஷ்டா மகா மகோத்சவ் கீ चंचवाड नगर का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव अत्यंत सानंद संपन्न हो चुका है। भगवान भी अत्यंत प्रसन्न है। मुनिसुरतनाथ भगवान अभी प्रतिमा को उठाते समय फूल की तरह हल्के बनकर के उठ गए और मंदिर में विराजमान होने के लिए राजी हो गए। इस युग के आदि में हैं जिनकी गणना हम संख्या में नहीं कर सकते और अनंत की संख्या में इस तीन लोक के शिखर पर सिद्ध शिला के ऊपर यानी और ज्यादा बहुत ऊपर अंतिम वात वलय में जा करके ये भव्यात्माएं विराजमान हो जाती हैं। आदिनाथ भगवान की आत्मा ने महान काम किया इस युग के आदि में। क्या क्या किया था इस मानव समाज को, मानव मात्र को, पृथ्वी पर रहने वाले त्रियंच और मनुष्यों को किस प्रकार के उपकार को उन्होंने किया था। पांच दिन तक आप लोगों ने इस मंच पर प्रत्येक उनके कार्यक्रमों को जो उन्होंने उस युग में किया था आपने साक्षात आंखों से देखा। भोग भूमि समाप्त होने के बाद जहाँ से कर्म भूमि प्रारंभ होती है वहाँ पर कोई ना कोई इस प्रकार का महान पुरुष उत्पन्न होकर के, शलाका पुरुष उत्पन्न होकर के कर्म भूमि में आवश्यक बातों का उपदेश देते हैं और महान उपकार करते। इस युग में आदिनाथ भगवान प्रथम थे और उन्हीं की परंपरा में 24 तीर्थंकर क्रम क्रमशः होते हुए अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर हुए और उसी परंपरा में उसी तीर्थ को आगे बढ़ाने में सहयोग देने वाले अपने आत्मा का कल्याण कर भव्य जीवों को कल्याण का मार्ग दर्शाने वाले जहाँ तीर्थंकर धर्म की प्रभावना करते थे, आज पंचम काल में मुनि महाराजों के ऊपर उसका दायित्व आया हुआ है और आज चिंचवाड़ नगरी में आचार्य श्री ने जो कहा था, विनय भैया से चर्चा हो गई थी और आप लोगों ने भी पंच कल्याण के लिए कई बार निवेदन करने के लिए वहां पर गए थे। मध्य प्रदेश का पंचांग अलग होता है और महाराष्ट्र का पंचांग अलग, तो पंचांग पंचांग में क्योंकि क्षेत्र क्षेत्रीय पंचांग में बहुत अंतर पाया जाता है, पंचांग के अनुसार शुभ मुहूर्त निकाल करके आचार्य ने जिस मुहूर्त के लिए आशीर्वाद दिया था और विनय भैया ने जिसके लिए आशीर्वाद प्राप्त करके हम लोगों को संकेत दिया था उसके अनुसार हमारा विहार भी हुआ और हम चिंचवाड़ में आकर के इस महान कल्याणक महोत्सव को संपन्न भी किया। इसके माध्यम से यहाँ आने के पश्चात कुछ समय शेष रहा, पंच कल्याणक का तारीख कुछ दूर होने से पुना नगरी में संपूर्ण विहार करने के लिए भी अवसर प्राप्त हुआ। इसके दौरान विमान नगर में मंदिर बनाने का संकल्प हुआ, कुछ राशि भी एकत्रित हो गई। इसी प्रकार वहां पर भी एक वीतराग मंदिर बनने वाला है और इसी तरह से दोबारा यही कार्यक्रम पुनः देखने को मिलेगा। कितने मुनि महाराजों के सानिध्य में मिलेगा मैं कह नहीं सकता, उसके लिए तो साक्षात आचार्य श्री आ जाए तो मैं भावना भाता हूँ बहुत अच्छा होगा। एक मंदिर का शिलान्यास हो गया, वो खराड़ी वीरोदय 2 में शिलान्यास हो गया, वीरोदय 1 का भी रुका हुआ है, थोड़ा सा काम शेष है उसका भी हो जाएगा। इन सभी स्थानों में वीतराग जिन धर्म की प्रभावना हो, आप सभी लोग इस प्रकार की भावना रखेंगे और कदम आगे बढ़ाएंगे तो आपके लिए तो कोई भी काम रुक नहीं सकता, क्योंकि बड़े बड़े गुरुओं का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा रहता है। वह पंचांग महाराष्ट्र का जब हाथ में विनय भैया ने लिया था और तारीख निश्चित किया था, उसके लिए फिर प्रश्न आया कौन सा संघ जाएगा पुना के लिए विहार करेगा। तो पंचांग को हाथ में लेते ही 5 का ही योग रहा, तो महाराष्ट्र का पंचांग ने भी बड़ा अतिशय चमत्कार कर दिया कि उसने 5 महाराजों को योग बना करके दे दिया। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। मेरा पुना नगरी में पंच कल्याणक के संदर्भ में आने का और देखने का सानिध्य देने का ये दूसरा अवसर है। इसके भीतर हमको इस बार बहुत आनंद आया पहली बार से, क्योंकि वो एक व्रतोपदेश संस्कार जो था इसके बीच में, मुझे इस बार वह बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसमें जो विकार आए थे उनको दूर करने से मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। सम्यक दर्शन की रक्षा के लिए ऐसे कार्यक्रम होना चाहिए, सम्यक दर्शन के पालन के लिए श्रावकों को और मुनियों को दोनों को विचार करना चाहिए। अगर किसी क्रियाकलाप में लोकमूर्ता के विषय आकर के प्रविष्ट होती हैं तो आप लोग उसको धर्म समझ करके आगे बढ़ाते हैं, लेकिन ये सारी बातें ज्ञानी मुनि महाराज, ज्ञानी आचार्य परमेष्ठी, ज्ञानी साधु परमेष्ठी और प्रतिष्ठाचार्य जो ज्ञानी होते हैं, आगम का ज्ञाता होते हैं, वो सोच विचार करके हर कार्यक्रम को संपन्न कराते हैं। अपने तरफ से विचार करके कोई भी कार्यक्रम अज्ञान के माध्यम से करने पर बहुत बड़ी हानि होती है, उसकी गलत की ही एक परंपरा चल पड़ती है। और इस परंपरा को रोकना बहुत आवश्यक है आपने आत्म कल्याण के लिए। आत्मा का कल्याण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को निर्वाह करने पर होता है और विशेष रूप से श्रावक अपने जीवन में संयम का धारण तो नहीं कर सकता, वो असंयम ही रहता है। भले ही अनुव्रत धारण करे, त्रस हिंसा का त्याग कर स्थावर हिंसा को रखता है तो वह भी असंयम की कोटि में कहलाता है। वह असंयम होने के कारण श्रावक चारित्रवान तो नहीं कहलाता, परंतु चारित्र की ओर बढ़ने के लिए उसकी पूरी आस्था रहती है, पूरा प्रयास रहता है, पूरी साधना जुटा लेता है। छठ कायिक जीवों में से स्थावर कायिक जीवों को छोड़कर, मतलब स्थावर कायिक जीवों को भी मैं अनावश्यक रूप से हिंसा नहीं करूंगा, इस प्रकार संकल्पी होता है, अनावश्यक स्थावर हिंसा नहीं करता और आवश्यक त्रस हिंसा को भी वो छोड़ नहीं सकता, क्योंकि अनुवृत्ति बनने के बाद खेती, उद्योग, व्यापार इत्यादि जब करता है तो इन कार्यों में त्रस हिंसा भी रुकती नहीं, लेकिन संकल्पी हिंसा का मैं त्याग करूंगा। इस प्रकार अनुव्रत, स्थूल अनुव्रत को ग्रहण करके वह संकल्प पूर्वक होने वाली हिंसा को जब रोकता है तो उसका अनुव्रत का स्टेज प्रारंभ होता है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वह आरंभी हिंसा को और उद्योगी हिंसा को और कौन सी हिंसा, विरोधी हिंसा को भी छोड़ने का विचार मन में रखता है और इन हिंसा को कम करते हुए सीढ़ियां चढ़ता है। इन सीढ़ियों को 11 प्रकार से चढ़ता है। प्रथम प्रतिमा दर्शन प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा व्रत प्रतिमा। दर्शन और व्रत इन दोनों प्रतिमाओं में वह अत्यंत परिपक्व होता है। पहली प्रतिमा में ही वह सब प्रकार के मिथ्यात्व को त्याग कर, अंधश्रद्धा को त्याग कर, अंध रूढ़िवादों को त्याग कर सर्वप्रथम वह सम्यक दृष्टि बनता है। यह जैन धर्म रूढ़िवादी धर्म नहीं है, अंधविश्वासी धर्म नहीं है, एक वैज्ञानिक धर्म है, विचारक धर्म है। इसमें कोई भी अनर्थकारी और व्यर्थ जो क्रियाकलाप होते हैं उसके लिए स्थान नहीं है, और इसलिए सोच विचार करके सम्यक दर्शन की कितनी लोक मूर्ताएं, सम्यक दर्शन के कितने दोष हैं और उसमें क्या क्या आते हैं ये देख करके अपने अनुष्ठानों में ऐसी कोई चीज रह गई हो तो उसको दूर करके, उसको अलग करके शेष अनुष्ठान को अपनाना, ये विवेकपूर्ण क्रिया कहलाती है। ऐसी विवेकपूर्ण क्रियाएं जहाँ होती हैं वहाँ पर रत्नत्रयधारी मुनियों का सानिध्य मिलना और धर्म की प्रभावना होना कोई कठिन बात नहीं होता है, और यही बात यहाँ पर विशेष रूप से हमने इस पंच कल्याणक में देखा और मुझे बहुत आनंद आया। 20-22 बालकों के मस्तक पर पिंची से आशीर्वाद दे करके जैन धर्म के संस्कार इनमें अच्छी तरह से आए, ये मैंने जो अंतरंग से भावना भाई है उन 22 बालकों का कल्याण अवश्य सम्यक दर्शन करेगा और वह उन 22 आत्माओं को स्वर्ग ले जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। सम्यक्तों का पालन करने वाला एक श्रावक भी रूढ़िवादी से अनुराग नहीं रखता, प्रेम नहीं रखता, छानबीन करता है, वो रूढ़िवाद को महत्व नहीं देता, वह धर्म के तत्वों को महत्व देता है, सिद्धांतों को महत्व देता है। जो परीक्षित फिल्टर्ड जो क्रियाएं होती हैं वो फिल्टर्ड है या नहीं देख करके आगे बढ़ता है, ये श्रावक का परम कर्तव्य होता है। व्रत जितने भी ले लो, सम्यक दर्शन में यदि कमजोरी है तो समझना जिस प्रकार बिल्डिंग बनाने के उपरांत नींव कमजोर होती है, नींव है ना, फाउंडेशन कमजोर होता है और इसके उपरांत दीवाल उठाते हैं तो दीवाल ज्यादा देर तक ठहर नहीं सकती। सम्यक्तों के नींव पर ही चारित्र का महल खड़ा होता है, सम्यक्तों के नींव पर ही सम्यक ज्ञान का वह दीवाल खड़ी होती है। चारित्र छत है, तो सम्यक ज्ञान दीवाल है और सम्यक दर्शन जो है ना क्या है वो, हाँ नींव है। ये उदाहरण ध्यान रखो और किसको महत्व देना, सम्यक दर्शन को ज्यादा से ज्यादा महत्व देना। चारित्र में भले ही कमजोरी रहे फिर भी निर्वाण को प्राप्त होता है जीव, लेकिन सम्यक दर्शन में कोई कमी हो, क्योंकि यह आस्था का विषय है, ये श्रद्धान का विषय है। जैसा जिस वस्तु की हम आस्था करते हैं वैसा ही चलना पड़ता है, और चलने का मार्ग अंध श्रद्धा पूर्वक हो जाए तो हम गंतव्य स्थान पर पहुंच नहीं पाएंगे। आंखों पर हम यदि पट्टी बांध करके जल्दी 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 रास्ता तय करना चाहते हैं तो क्या यह संभव हो सकेगा? नहीं, पट्टी बाधक है। पट्टी को जल्दी उतारो और फिर आंखें खोलो और गंतव्य स्थान को देखो, सामने कहाँ पहुंचना है, कहाँ जाना है। सामने देखने के उपरांत फिर धीरे धीरे चलो, चलने का जो स्पीड होती है अपनी भले ही धीरे धीरे हो, आप निश्चित पहुंच जाएंगे, लेकिन पट्टी ही नहीं उतारेंगे तो किस रास्ते से चल पाएंगे? नहीं चल सकेंगे। तो चारित्र से ज्यादा महत्व होता है सम्यक्त्व के लिए। दंशन मूलो धम्मो दर्शन, चारित्र धर्म का मूल है और वह चारित्र को पूज्य बना देता है। चारित्र इसको पूज्य बना देता है और ये चारित्र को पूज्य बना देता है। परस्पर में पूज्यता लाने की जो क्षमता होती है वो दोनों में है। आगम में प्रत्येक पृष्ठ पर लिखा है, मैं उस बात को कह दूं थोड़े से समय में, समय ज्यादा नहीं है, 10 बज गया। सम्यक दर्शन के बिना यदि हम बहुत कठोर त्याग तपस्या भी करते हैं, चारित्र को उज्जवल रखते हैं, तो क्या निर्वाण की प्राप्ति होगी? कर्म की निर्जरा होगी? क्या गुणस्थान बदलेंगे? चौथा गुणस्थान, छठा इत्यादि आगे के गुणस्थान होंगे? आगम कहता है बिल्कुल नहीं। तो फिर सम्यक दर्शन ग्रहण ही करना पड़ेगा क्या? हाँ बिल्कुल, निर्दोष सम्यक दर्शन ग्रहण करना ही पड़ेगा। फिर चारित्र हम नहीं भी लेते हैं तो चलेगा क्या? तो कहते हैं नहीं चलेगा, क्योंकि चारित्र जीवन में नहीं आएगा तो पंच पापों का त्याग होगा ही नहीं। एक पाप का त्याग हो गया जिसको हम मिथ्यात्व कहते हैं, मिथ्यात्व के उदय में अंधश्रद्धालु बन करके क्या करते थे, धर्मानुष्ठान उनको करते थे, और जब समझ में आ गया तो उनको त्याग कर दिया। त्याग कर दिया तो सही सही चलने लगे। अब क्या करना, एक काम तो हो गया, अंतरंग परिग्रह मिथ्यात्व का त्याग तो हो गया, अब क्या करना, आगे सोचना। अब जीवन में त्यागने के लिए पंच पाप हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। परिग्रह सबसे बड़ा पाप माना जाता है और सबसे ज्यादा इकट्ठा किसको किया जाता है, कौन से पाप को? परिग्रह पाप को। देखो ये परिग्रह पाप यदि जीवन में नहीं रहेगा तो उस सम्यक्त्व के साथ संयम आएगा, इंद्रिय संयम आएगा और प्राणी संयम आएगा। इंद्रिय संयम और प्राणी संयम परिग्रह के त्याग के बिना नहीं आते, और ये परिग्रह त्याग हुए बिना अंतरंग कषायों का त्याग नहीं हो सकता। अंतरंग क्रोध मान माया लोभ, ये चार कषायें हैं जो अंतरंग पाप हैं। ये कषायें बाह्य पदार्थ की ओर उन्मुख होती हैं। लोभ कषाय कहती है इतना पर्याप्त नहीं, परिग्रह थोड़ा और कमा लो, और संग्रह करो, और इकट्ठा करो, और इकट्ठा करते करते जीव को कभी तृप्ति नहीं मिलती, और इकट्ठा करते समय भी जीवों का घात होता है। ये जीवों का घात प्राणी असंयम है, और ये प्राणी असंयम परिग्रह के सद्भाव में नियम से अपनाना ही पड़ता है। परिग्रह है तो प्राणियों की रक्षा नहीं हो सकती। त्याग करते करते एक श्रावक एक लंगोटी भी बचा लेता है तो प्राणी संयम की रक्षा नहीं होती, जीव हिंसा बनी रहती है, क्योंकि उस लंगोटी को धोना, उसका स्वामित्व धारण करना, उसके बिना मैं नहीं रह सकता, यह विकल्प परिग्रह मूर्छा परिग्रह तत्वार सूत्र में कहा है। मूर्छा भाव को परिग्रह कहते हैं। उस लंगोटी का मालिक एक ऐलक भी इंद्रिय संयमी नहीं होते, प्राणी संयम को धारण करने वाले नहीं होते, क्योंकि यह लंगोटी यह इंद्रिय संयम के लिए भी बाधक है और प्राणी संयम के लिए भी बाधक है, क्योंकि इसके माध्यम से जीव हिंसा भी होती है और ये बाह्य पदार्थ होने से ये इंद्रिय विषय है, इसके बिना मैं नहीं रह सकता, ये इसका मैं स्वामित्व धारण करता हूँ, ये मेरा है, मैं इसका हूँ, ये जो बुद्धि होती है उसके बिना नहीं चल सकते, इसलिए वह इंद्रिय संयम में भी बाधक है, क्योंकि वह वस्त्र भी इंद्रिय संयम में बाधा पहुंचाती है और वह इंद्रिय विषय है, इसलिए मुनि महाराज समस्त प्रकार के इंद्रिय विषयों का त्यागी होते हैं। इंद्रिय संयम आने के बाद निर्दोष चारित्र जीवन में आता है और मिथ्यात्व के जाने के बाद निर्दोष सम्यक्त्व जीवन में आता है। ऐसा ही निर्दोष सम्यक्त्व सभी भव्य जीवों के आत्मा में झग 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 चमकता हुआ आ जाए तो इतना भी हो जाए ना तो आचार्य श्री का विहार निश्चित रूप से इस देश में हो जाएगा। हम अटक कहाँ रहे हैं? हम अटक रहे हैं रूढ़िवादों में, रूढ़िवादों में उनका विचार चिंतन मनन नहीं कर पा रहे हैं कि ये जीवन के लिए कितना कल्याणकारी और कितना अकल्याणकारी ये क्रियाएं हैं, ये बाह्य क्रियाओं में अटक रहे हैं और उनको धर्म समझ करके धर्म की उपाधि दे करके हम बन चल रहे हैं, तो ये नहीं। यह जिन धर्म निष्कलंक वैज्ञानिक परिशुद्ध धर्म है, इस धर्म में किसी प्रकार के अंतरंग पाप के लिए और बहिरंग पाप के लिए कोई स्थान नहीं। केवल आत्मकल्याण करो, आत्मकल्याण के पथ पर स्वयं चलो, रत्नत्रय को धारण करो और उस रत्नत्रय के द्वारा जो पर के ऊपर प्रभाव पड़ता है वह प्रभाव सम्यक दर्शन होने से, संयम होने से, चारित्र होने से और अंतरंग में जो जिनागम के अनुसार विद्या प्राप्त की है, ज्ञान प्राप्त किया है, विवेक का ज्ञान जागृत हुआ है, वही है सम्यक ज्ञान। यह सम्यक ज्ञान लोक के अंधकार को हटाने का काम करता है। यह सम्यक ज्ञान लोक में मिथ्यात्व के अंधकार को हटाने में काम करता है और अपने आत्म कल्याण के लिए सम्यक्त्व के नींव को मजबूत करता है और आत्म कल्याण के लिए उस बिल्डिंग में छाया में बैठकर सुख शांति पाने के लिए सम्यक ज्ञान दीवाल का काम करता है और ऊपर जो छत है वह छत नींव के आश्रय से और दीवाल के आश्रय से ऊपर टिका हुआ होता है। दीवाल को हटाया जाए और नींव को हटाया जाए तो छत नीचे आ जाएगा, उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए किसी का अस्तित्व न मिटे ये विकल्प हमें करना है, इसी में आत्मकल्याण है। नींव मजबूत हो, दीवाल भी मजबूत हो और उस पर जो आरसीसी छत डाला जा रहा है वह भी बिल्कुल मजबूत हो जिससे पानी ना टपके, छाया भी मिले, इस प्रकार का चारित्र जो होता है वह सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन से संस्कारित होता है। सम्यक चारित्र किससे संस्कारित होता है, सुन रहे कि नहीं? सम्यक चारित्र किससे संस्कारित होता है? सम्यक दर्शन से और सम्यक ज्ञान से संस्कारित चारित्र ही निर्वाण का कारण है, ऐसा वैसा चारित्र निर्वाण का कारण नहीं। और इसलिए ये चिंता करनी चाहिए, चारित्र की सफलता के लिए सम्यक तो निर्मल रखो और सम्यक ज्ञान भी निर्मल रखो तो निर्वाण की प्राप्ति अवश्य होगी। आज के दिन प्रातः वेला में उसी आदिनाथ को आदि सागर आदि तीर्थंकर बने, आदि सागर से आदि तीर्थंकर बने और आदि मोक्ष गामी, मोक्ष क्या होता है, मोक्ष तत्व क्या होता है, उसके उपदेशक बने। तो उनका तीर्थ धर्म तीर्थ था। आदिनाथ भगवान ने उपदेश दे करके रत्नत्रय स्वरूप धर्म का धर्म तीर्थ की प्रवर्तना की और उनको आहार देने वाले भाग्यशाली कौन थे, वहां कुर्सी में कुर्सी पर बैठे हैं जिन्होंने पड़गाया था। देखो जो सभी जीवों पर दया करके जीवन भर जिन्होंने लाखों जीवों को बचाया है और अपनी आजीविका के लिए आए हुए धन को जिन्होंने सदुपयोग किया है, उन्होंने संपूर्ण प्राणियों को आज तक अभय दान देने का काम किया है, महान काम किया है। और मेरे संकेत मात्र से उन्होंने जिस पद पर मैं चाहता था उसको सुनाते ही गुरु आज्ञा को आदर्श मानकर, महाराज जो आप कहोगे उसके लिए मैं तैयार हूं, आप जो कहेंगे वही बनूंगा, और वही पद को लेकर के उन्होंने अपना पार्ट निभाया, धर्मार्जन किया, खूब पुण्य बढ़ाया। और कौन सा पार्ट किया, आदिनाथ भगवान को आहार देने का लाभ, जिनको जाति स्मरण हुआ, जिनको जाति स्मरण हुआ, नवदा भक्तियां पता चली और प्रथम बार अपने हाथ से ग्रास रखा आदिनाथ तीर्थंकर के हाथ में और ऐसा पुण्यार्जन किया, ऐसा दाता भी, सुनो नाटक करने वाला भी हो चाहे साक्षात हो, कोई भी हो प्रत्यक्ष वाला भी हो, वो तीसरे भव में मोक्ष जा सकता है। आज भी पंचम काल में जो मुनियों को आहार दान देते हैं, सत्पात्र दान देते हैं, ऐसा अविरत सम्यक दृष्टि जीव चौथा गुणस्थान वाला जिसने कुछ भी संयम पालन नहीं किया है, केवल एक सम्यक को निर्मल रख करके चला है, सम्यक दृष्टि बन करके रत्नत्रयधारी मुनियों के हाथ में एक ग्रास भी एक दिन आहार दान देता है, तो उसके लिए भी आगम में लिखा है, जिनेंद्र भगवान ने कहा है और आदिनाथ भगवान ने भी कहा था, ऐसा गृहस्थ भी कम से कम तीन भव में और अधिक से अधिक आठ भव में मोक्ष जाता है। और वह ऐसा सम्यक दृष्टि गृहस्थ उस पर्याय से, मनुष्य पर्याय से मरण करके महान रिद्धिधारी वैमानिक देव बनता है और वैमानिक देवों से आकर के वो एक भव से भी मोक्ष जा सकता है, ये भी विधान है आगम में। मोक्ष जाने के लिए कितना सस्ता पड़ गया, कितना शॉर्टकट पड़ गया, लेकिन जिस भव में आप मोक्ष जाएंगे उस भव में तो मोक्ष मुनि बनोगे ना, बनना तो पड़ेगा। मुनि बने बिना तो, दिगंबर साधु बने बिना तो निर्वाण की प्राप्ति होती नहीं है। क्यों ये नियम है ऐसा, ऐसा इसलिए है वस्त्रादि ये परिग्रह पाप बंध में कारण है और जो पाप करता है वो पाप कर्म का बंध भी करता है, दूसरे को अभय दान नहीं देता है, दूसरे को अभय दान देना इंद्रिय संयम है, प्राणियों की हिंसा नहीं करना ये इंद्रिय संयम है और हो गया इंद्रिय संयम है और प्राणी संयम है, प्राणी संयम है जीव दया करना और इंद्रिय संयम क्या है इसका मोहर नहीं रखना, वस्त्रादि परिग्रह का मोह नहीं रखना, मूर्छा भाव नहीं रखना, उसका अधिकार नहीं रखना, उसका ममत्व नहीं रखना। ममत्व का त्याग करना, मूर्छा भाव का त्याग करना ये अपरिग्रह महाव्रत कहलाता है, यह आगम ग्रंथों में सर्वत्र चर्चा है। इसलिए दिगंबर होना ही पड़ता है मोक्ष प्राप्ति के लिए। अगर आप सिद्ध परमात्मा बनना चाहते हैं तो एक पापमय जीवन को जो 10 प्रकार के परिग्रहों से लिप्त है उस जीवन को निर्मल बनाने के लिए पंच पापों का मोह त्याग करना पड़ता है, और उन पंच पापों में जो परिग्रह पाप है सभी पापों का वह बाप है। पाप का बाप कौन? परिग्रह, बाह्य परिग्रह पाप का बाप। अंतरंग परिग्रह तो है ही, अंतरंग परिग्रह क्यों रहता है? बाहर का बाप है तो अंदर का भी बाप है, और बाहर के बाप को छोड़ने का विकल्प छोड़ोगे तो अंदर का बाप भी चला जाएगा और बाहर का बाप भी चला जाएगा। पाप मात्र से जिनका जीवन मुक्त होता है वो दिगंबर साधु बनता है, और वह जगत कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी, प्रत्येक जीव को सुखी रहने की कामना करने वाला दिगंबर मुनि महाराज इस लोक में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर आचरणवान दिखाई देते हैं। आदर्श आचरण एक दिगंबर मुनि में ही हो सकता है। जहां परिग्रह है, जहां संग्रह है, लोभ लालच है, चिंताएं हैं, व्याधि हैं, बाधाएं हैं, वहां पर आत्मा निर्मल कैसे हो सकती है? आत्मसाधना नहीं हो सकती। आज बड़े बड़े शिविर लगा करके ध्यान करने के लिए गृहस्थ पहुंचते हैं, क्यों? शांति नहीं मिलती घर में। वो शांति का, अशांति का कारण क्या है? परिग्रह। और परिग्रह घर में रख करके उसका स्वामित्व आत्मा में धारण करके, मन में धारण करके ही ध्यान करने के लिए शिविर में अटेंड होते हैं, और ध्यान में बैठ तो जाते हैं वो, लेकिन जिसको त्यागा नहीं उस ओर 10 बार चक्कर लगा करके ध्यान में आता रहता है, फिर भी आनंद रहता है। ओ हो, कषाय मंद होने से थोड़ी सी विशुद्धि जरूर बढ़ जाती है, थोड़ी सी विशुद्धि बढ़ जाती है और ध्यान में मन लग जाता है, और उसी को ध्यान समझ बैठते हैं आप। वो ध्यान नहीं है। जो ध्यान होता है वहां मन परिग्रह की ओर चक्कर लगा के नहीं आता, वह उन विकल्पों से दूर रहता है। परिग्रह के विकल्पों से जिसका मन अत्यंत दूर है वो कौन है इस दुनिया में? एक दिगंबर मुनि तो है। अयलक महाराज को भी ध्यान की सिद्धि नहीं होती, क्योंकि एक वस्त्र मात्र भी अपने ध्यान को विकारित बना सकता है। देखो दिगंबर मुनि क्या होते हैं और परिग्रहवान जीव क्या होता है, इससे समझ में आता है। दिगंबर मुनि को तो इस पृथ्वी के एक परमाणु मात्र से भी मोह नहीं रहता, इतने महान रहते हैं। इस जगत को, इस परिग्रह को, इस माया को केवल देखते हैं और जानते हैं, देखते हैं जानते हैं, इसमें मोह ममता को प्राप्त नहीं होते। ये अपने मन को वश में रखते हैं, ये मन का विजय है, और यह मन का विजय आत्म कल्याणकारी होता है। जिसका मन परिग्रह की ओर चक्कर लगाता है वो आत्मविजयी, मन विजयी कैसे हो सकता है? नहीं होता। फिर भी यदि ध्यान के प्रति इतना आसक्त रहता है तो अवश्य वह विवेकी गृहस्थ श्रावक ये समझ लेता है, मेरे मन में जो ध्यान के प्रति प्रेम है, जो ध्यान के प्रति मेरी आस्था है, उसको साकार करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? इस ओर चिंतनशील तो होता ही है, और इस ओर चिंतनशील होगा तो वो नियम से यह नियम लेगा। पंच कल्याण के अवसर पर भी महाराज हम इसको देख करके बहुत प्रभावित हैं, बहुत यहाँ अच्छा लगा, बहुत शांति मिली, बहुत धर्म का ज्ञान एकत्रित हुआ, इकट्ठा हुआ, और हमारे लिए इतना सुख मिला, ये सुख कभी जीवन में मिल ही नहीं सकता कहीं भी। तो मंच पर नाटक देखने मात्र से भी, ये कार्यक्रम देखने मात्र से भी इतनी शांति आपके आत्मा में मिल सकती है और आनंद लुटा रहे हैं, तो पूरे परिग्रह को त्याग करने पर कितनी मिलती है आप थोड़ा सोचो ना। सब परिग्रह त्याग करके हमारे बाजू में यहाँ बैठ जाएंगे तो वो आनंद अलग है। उसमें आकुलता, व्याकुलता, पापों का नामो निशान नहीं। मन ध्यान में सदा रमता है, चलता फिरता भी ध्यान में है, सामायिक में भी ध्यान में है, निर्विकार है, निर्मल है, वो अपने आप में मस्त है, सदा प्रसन्न रहता है वह आत्मा जिनके पास कषायें शांत होती है। ऐसी शांत जीवन जीने का, निष्कषाय जीवन जीने का, निर्मल जीवन जीने का, आत्मा का मंगलमय धर्म को धारण कर आत्मा में मंगलमय जीवन जीने का अवसर आप यदि पाना चाहते हैं, लक्ष्य बनाओ। परिग्रह में सुख नहीं है, आत्मा को अकेला बनाने में सुख है। मैं आत्मा अकेला हूँ, पीछे से कुछ लाया नहीं था, वर्तमान में जिसको मैं ग्रहण कर रहा हूँ वो मेरा नहीं है, मेरा जो है वो मेरे पास है। हाँ हाँ ठीक है, दो मिनट। मेरे पास जो होता है वो मेरे पास है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यही अपनी असली संपत्ति होती है। उससे मोह करो, उससे प्यार करो, उसको संभालो, उसको धारण करके आत्मा में परमार्थ सुख की अनुभूति करो। परमार्थ सुख की अनुभूति दर्शन, ज्ञान और चारित्र में है। यह साधना कोई भी कर सकता है, प्राणी मात्र कर सकता है, और ये धर्म प्राणी मात्र के लिए उपदेश के रूप में था। दिगंबर मुनि कौन बन सकता है? म्लेच्छ खंड से आने वाले बड़े बड़े राजा लोग भी यहाँ आकर के भरत चक्रवर्ती के साथ जो आए थे, वे मिथ्या तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को त्याग करके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप इस धर्म को स्वीकार किया था। ये रत्नत्रय स्वरूप धर्म ही विश्व धर्म है, जो कल्याणकारी है, जो निर्वाण की प्राप्ति करा देता है, आत्मा को अनंत सुख की उपलब्धि करा देता है, आत्मा अनंत सुखी होता है, यही विश्व धर्म है। और बाकी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को तो अधर्म कहां है, वो विश्व का अधर्म है। विश्व का अधर्म मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, और विश्व का सबसे बड़ा धर्म सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इसको कौन सा मनुष्य धारण नहीं कर सकता? सबके लिए अधिकार है इसको धारण करके, पालन करके, अपनी आत्मा को निर्मल बना करके। आज जैसे सुबह सुबह प्रातः वेला में आदिनाथ भगवान को मोक्ष की प्राप्ति, आयु जब कम होने लगती है ना, आयु खत्म होने को आती है, तीर्थंकर भगवान का अकाल मरण नहीं होता, आयु कर्म एक तरफ समाप्त होता रहता है और एक ओर अपने योग निरोध के माध्यम से श्वासोश्वास आदि समस्त क्रिया अपने आप रुकती है, और इसी को योग निरोध क्रिया कहते हैं। ये ध्यान तृतीय शुक्ल ध्यान के माध्यम से होता है, और चतुर शुक्ल ध्यान में वे जब जा करके प्रतिष्ठित होते हैं तो उसका काल कितना रहता है? मोक्ष प्राप्ति का काल तो कितना ही, कितना, पांच अक्षरों का उच्चारण करने में जितना समय लगता है, और हम उच्चारण करेंगे तो ज्यादा समय लगता है। श्रुत केवली जो उच्चारण करते हैं उतना समय, कौन कौन से अक्षर, अ, ई, उ, री और उल्री, अ, ई, उ, री, उल्री, जल्दी उच्चारण करना और स्पष्ट उच्चारण करना, इतने इसमें जितना समय लगा उसको भी अंतर मुहूर्त कहा है। उस अंतर मुहूर्त काल में घाती कर्मों को तो पहले से ही नष्ट किया था, परंतु अघाती कर्मों को भी वे केवली भगवान आयु कर्म की समाप्ति के साथ साथ समस्त तीन प्रकार के उन अघाती कर्मों को नष्ट करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं। आज आप लोगों ने पूजा करते समय वही देखा, द्रव्य कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म से मुक्त होकर के उस आत्मा ने, आदिनाथ भगवान के आत्मा ने, जिन्होंने अनंत काल तक संसार में भटक भटक करके अनंत यातनाएं सहन की थी, आत्मज्ञान होने के उपरांत उन्होंने ये रास्ता पकड़ लिया मोक्ष मार्ग का, और मोक्ष मार्ग की साधना करके तीर्थंकर बनकर, तीर्थंकर पद को बांध कर, तीर्थंकर पर्याय में जन्म लेकर इस युग को असी, मसी, कृषि, वाणिज्य इत्यादि षट कर्मों का उपदेश लाखों करोड़ों वर्ष तक देकर, अंत में जब ये समझ में आया कि सभी लोग अब जानने लगे असी, मसी, कृषि, वाणिज्य, व्यवहार सबको, और ये अब जीवन जी सकते हैं, भौतिक जीवन जीने की कला भी मालूम नहीं थी, अब ये जी सकते हैं, ऐसा विचार करके संसार से निवृत्त होने वाले ही थे, परंतु होने से पहले इंद्र को विकल्प हुआ। इंद्र को विकल्प हुआ 84 लाख पूर्व में से 83 लाख पूर्व वर्ष संसार में व्यतीत हो गए और अभी भी तीर्थंकर को वैराग्य नहीं हो रहा है, क्या मामला है? अब भव्य जीवों का कल्याण कैसे होगा? 1 ही लाख वर्ष पूर्व शेष रहा है भव्य जीवों का कल्याण। ये परमार्थ का उपदेश और भी महान होता है, इसको समझना बहुत कठिन होता है, जीव धीरे धीरे समझते हैं परमार्थ के क्षेत्र के विषय को, और उसका उपदेश देने के लिए भरपूर समय चाहिए, और परमार्थ का उपदेश आदिनाथ भगवान को देना है, लेकिन वैराग्य नहीं हो रहा है, क्या करें? तो वैराग्य की प्राप्ति के लिए उनको नाटक करना पड़ा, इंद्र को नाटक करना पड़ा, और ये एक नीलांजना के माध्यम से जिनकी आयु अल्प थी और नृत्य करवाया, और उस नृत्य को देख करके 12 भवना का चिंतन आदिनाथ को शुरू हुआ। ये संसार अनित्य है, ये नीलांजना जिस प्रकार से अपने आयु को समाप्त करके अभी चली गई, मेरी आयु भी तो अल्प रही होगी, देखा ओ 84 लाख वर्ष में से मेरे 83 लाख वर्ष निकल गए हैं, अवधि ज्ञान तो था ही, 83 लाख वर्ष निकल गए हैं और थोड़ा सा ही बाकी रहा, नहीं मुझे भी अब परमार्थ की साधना के लिए प्रयास करना चाहिए, परमार्थ की साधना मेरा आत्मकल्याण है, और तीर्थंकर पद जो यह बंधा है मेरे परिणामों से ही बंधा है, जनता का भी कल्याण होना है, परमार्थ का उपदेश देना भी मेरे जिम्मेदारी पर है, ऐसा कहकर वैराग्य हुआ। वैराग्य होते ही वे देवगण उतर आए, किसी के वैराग्य में उतर के नहीं आते, आपको अभी भी वैराग्य होगा तो वो देव लोग आने वाले नहीं हैं, केवल तीर्थंकरों के वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए लोकांगतिक देव अवतरित होते हैं। वे आए और अनुमोदना की और दीक्षा धारण करके 1000 वर्ष तक मुनि अवस्था में रहकर त्याग तपस्या की आदिनाथ भगवान ने। 1000 वर्ष के पश्चात उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उसमें 1 लाख वर्ष पूर्व जो रहे थे उसमें 1000 वर्ष माइनस करें और उतना काल उनका केवल ज्ञान का काल रहा, और मुनि अवस्था का जो काल रहा वो केवल 1000 वर्ष का रहा, और संसार का जो काल रहा, गृहस्थ अवस्था का जो काल रहा उनका 83 लाख वर्ष का रहा। देखिए, विचार करिए, आप भी ये प्रवचन सुन करके अपने आयु का थोड़ा बहुत वजा भागी करके वैराग्य को प्राप्त कर लेते हैं तो पुनः इसी पंडाल में दीक्षा कार्यक्रम क्यों न रखा जाए किसी का? भावना भाव, दीक्षा में ही आत्मा का कल्याण है, वास्तविक सुख तो आत्मा के भीतर है, नकली सुख को ढूंढने के लिए आप 24 घंटा बाहर भाग रहे हैं। परिग्रह में सुख होता नहीं, परिग्रह दुख का मूल है, उसमें जो सुख मिलता है वो क्षणिक होता है, उस सुख को भोगते समय पाप कर्म का बंध होता है, वही पाप कर्म कालांतर में जीव को दुखी ही बनाता है। हम उस सुख को भोग रहे हैं जो पुनः हमें दुख देने वाला है, उस सुख को खोज रहे हैं जो सुख हमें आकुल व्याकुल करने वाला है। ये बाहरी सुख परिग्रह में, वैभव में, पैसे में, परिवार में जो सुख मिल रहा है ये नकली सुख है। कम से कम ऐसा चिंतन तो करो, चिंतन करेंगे तो रास्ता मिलेगा, रास्ता मिलेगा तो कम से कम परमार्थ सुख अलग है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में ही वह मिलता है, उसकी साधना करेंगे तो कर्मों की निर्जरा होगी। इस प्रकार से भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नौ कर्म से मुक्त होकर निर्वाण को प्राप्त करने की यह परंपरा अनादिकाल से रही है। इसी परंपरा को आदिनाथ भगवान ने इस युग में दर्शाया था, स्वयं प्रैक्टिकल रूप किया और वह प्रैक्टिकल दुनिया को भी बताया, उपदेश दिया। तब से लेकर अब तक इस भारत की भूमि पर दिगंबर मुनियों का सतत विहार होता चला आ रहा, और ऐसे दिगंबर मुनियों का विहार इस धरती पर 18,500 वर्ष तक, उसके बाद नहीं, 18,500 वर्ष अभी पंचम काल के शेष हैं और दिगंबर मुनियों का अस्तित्व इसी भारत वर्ष में रहेगा, और इस आर्यखंड पर हो सकता है किसी कोने में भी रहेगा निश्चित है, और मुनियों के माध्यम से ही जगत को सच्चे सुख का उपदेश मिलने वाला है। वह सच्चा सुख आत्मा को छोड़कर बाहर नहीं, अंतर में खोजो, तो पाओगे, बाहर में खोजो तो दुखी होगे। अहिंसा परमो धर्म की जय। जिनवानी बोले,
प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी जयवंतो मां जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो मां अब तक हम विषयांध रहे, अब ना हम विषयांध रहे।
जिनवानी माता की जय।